अगर कोई बच्चा फेल हो जाए और उसकी फजर की नमाज भी कजा हो जाए तो हमें ज्यादा दुख किस चीज पे होगा? सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तुमने उफ नहीं कहना है। जो शरीक हयात है ना, उसको हयात में शरीक कीजिए। इस वक्त बच्चों पे स्पेंड करना आसान हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। देयर वर सेवन क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू एड्रेस दोज सेवन क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। पहला सवाल है, योर चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू। अच्छा, ये एक सवालिया अंदाज में पूछा है कि भाई आप में से कितने लोगों को लगता है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता, या अमूमन बच्चे बात नहीं सुनते? अच्छा ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, डू दे हैव अनमैनेजेबल सिबलिंग राइवलरी। सिबलिंग राइवलरी का इशू किस किस को महसूस होता है, बच्चों के दरमियान होता है? अच्छा, ये तो बड़ों के दरमियान में भी हो सकता है ना, मतलब अब्बू और अम्मी के भी अपने सिबलिंग्स से कोई ना कोई खुदा ना खास्ता। अच्छा, आर दे एग्रेसिव एंड वायलेंट इन एटीट्यूड। एटीट्यूडिनल इशूज बच्चों के किस किस का ख्याल है कि बहुत हैं आज के दौर में? एटीट्यूडिनल इशूज हैं। अच्छा, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो मैं बहुत माजरत, मुझे जो सवालात दिए हैं मैं उसको पहले फोकस करूंगा, लेकिन वो ऐसा ना सोच रहे हो कि भाई एटीट्यूडिनल इशूज तो बच्चों के ख्याल में पेरेंट्स के ज़्यादा हैं, पेरेंट्स के ख्याल में बच्चों के ज़्यादा हैं, और बहुत से बच्चों के ख्याल में टीचर्स के ज़्यादा हैं। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, डू दे शो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्टडीज़। स्टडी करने में वो रिलक्टेंट हैं, स्टडीज़ के लिए कोई आमादा नहीं हो रहे। इसी तरह एक और पॉइंट है, डू दे हैव पुअर ईटिंग हैबिट्स। तो इसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी हम, ये जो सात सवाल हैं मैं ज़रा वो सवालात बता देता हूँ, उसके ऊपर बहुत थोड़ा थोड़ा मैं कुछ उस पर बात करूँगा। एक और क्वेश्चन है, आर दे एडिक्टेड टू गैजेट्स। गैजेट्स के साथ मोहब्बत किस किस को है? हमारे माशरे में तो ये बहुत, सबसे बड़ी मोहब्बत का नाम ही गैजेट्स की मोहब्बत है, ऐसा ही है, क्या ख्याल है? तो और फिर, आर दे शाय एंड हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये भी कितने लोगों का ख्याल है कि उन्होंने कोई बच्चा ऐसा देखा है जो शाय है और कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा है? तो हम इन सात सवालों पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। पहली बात ये है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, और हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों का ये एहसास है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये मसला क्या है सुनने का? और मतलब पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, वो सुनते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मानते नहीं हैं, ठीक है? तो बच्चे की टेंडेंसी ये है कि वो काम करना चाहता है जो अपने अतराफ बड़ों को करते हुए देखता है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम अच्छी लिसनिंग स्किल्स का मुजाहरा करते हैं, हमारा एक लिसनिंग एटीट्यूड है, हम कि कोई बात हमसे कर रहा हो तो हम उसको पूरी तवज्जो से सुनते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, और उसकी पूरी बात को, जब वो अपनी पूरी बात करे तो उसे एक्नॉलेज करते हैं। तो बच्चा जब ऐसी सोसाइटी में आँख खोलता है जिसमें कोई भी किसी की सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, और बस उसे ज़बरदस्ती पकड़ के और ज़बरदस्ती अपनी तरफ मुतवज्जे करके और फिर कोई बात कहनी पड़ती है, तो बच्चा भी, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम पैदा होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो जिस इंसान से सबसे आसानी से और सबसे जल्दी और सबसे नेचुरली इम्प्रेस होता है, उस इंसान का नाम है अब्बू और अम्मी। लेकिन होता यह है, बच्चे अपने पेरेंट्स से नेचुरली इम्प्रेस्ड होते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो किसी और, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, उनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए, अपने पेरेंट्स को कोई बात कहना बहुत दुश्वार है। तो इस सिचुएशन में जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते और अपने पेरेंट्स तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो फिर बच्चों के अंदर भी ये रुझान पैदा होता है कि वो सुनना या सुन के मानना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस इंसान की बात, एक और इसमें बड़ी अहम बात है, अगर आप कभी ये जानना चाहें कि बच्चे सुनते हैं क्यों नहीं सुनते, सुनने ना सुनने का मसला क्या है, तो आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि वो कौन सा इंसान है जिसकी वो बात लाजमी सुनेंगे और कभी नहीं टालेंगे, उसकी बात सुनना भी चाहेंगे और मानना भी चाहेंगे। तो ये वो इंसान होता है जिससे बच्चे की बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। तो अगर पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो हम उन्हें ज़बरदस्ती करके तो अपनी बात मनवा सकते हैं और सुना सकते हैं, लेकिन वो खुद से हमारी बात सुनने पे मायल नहीं हो पाते। तो रिलेशनशिप का इंडिकेटर या रिलेशनशिप का साइन ये है कि हम कैसे एसेस करें कि हमारा रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा है, या पेरेंट्स एसेस करें कि हमारा रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ अच्छा है। तो उसका एक बहुत सादा सा क्राइटेरिया है, और वो ये है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप इंजॉयबल है। आप एक दूसरे को अवॉइड नहीं करना चाहते, आप दोनों एक दूसरे को इंजॉय करते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस को। तो हमारी सोसाइटी में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर दो लोग काफ़ी देर से एक साथ घूम रहे हों और बिल्कुल एक दूसरे से बात ना कर रहे हों, तो समझ लीजिएगा कि ये बाप बेटा हैं। अभी भी जो खुसर फुसर हो रही है आपस में, वो दोस्तों की हो रही है, मतलब फादर सन की ज़रा कम नज़र आ रही है। ऐसा होता है, पूरा दिन साथ गुजारा लेकिन खामोश रहे। अपने फैमिली के लोगों से बैठ के बात करना, अपने बच्चे से बात करना, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि वो अपनी बात हमसे कर सके, इसके लिए अपने मिजाज में तब्दीली की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुने, तो आप भी ये काम कीजिए कि आप उसको सुनें। जब आपका बच्चा पहली दफ़ा आपको आवाज़ देता है, अगर मैं ये एक और टेस्ट में आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रिसर्च हुई, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में किसी बच्चे को अपनी अम्मी को अपनी अम्मी की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में बच्चों को अपने अब्बू की अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। तो वो सोसाइटीज़ या वो कम्युनिटीज़ जहाँ पर किसी बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग काम है कि अब्बू सामने बैठे हुए हैं लेकिन वो किसी चीज़ में गुम है, या तो वो टीवी है या वो कोई और अपना काम है, नहीं अभी तो खाना खा रहे हैं, और खाना खा रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं हो सकती, वो तो खाना ही खा रहे हैं, और मतलब खाने में बड़ी पूरी तवज्जो के साथ खा रहे हैं, देखेंगे नहीं इस तरफ, या किसी और काम में बिज़ी हैं, या अपने मोबाइल, अगर हजरत मोबाइल उनके हाथ में आ गए फिर तो वो बिल्कुल भी, मतलब फिर तो कुछ भी कर लें आप, वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पेरेंट्स की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ये वो बच्चा है जिसका लिसनिंग एटीट्यूड सीवियरली अफेक्ट करेगा। वो बच्चा जिसको अपने पेरेंट्स की अटेंशन ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, उस बच्चे की लिसनिंग एटीट्यूड डेवलप होंगे बहुत अच्छे। हमारी सोसाइटी में बच्चों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है जब तक वो, मतलब बड़े होने तक का जो मरहला है ना, वो बड़ी मुश्किलों से गुज़रता है उन्हें, मतलब बल्कि बहुत मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, एक कुछ लोगों ने पाकिस्तानी सोसाइटी पे रिसर्च की कि ये जो बच्चे हमारे यहाँ होते हैं वो जब तक 12 साल की उम्र तक पहुँचते हैं तो सबसे ज़्यादा वो कौन से फ्रेजेस सुनते हैं, और वो तीन फ्रेजेस हैं जो हर बच्चा 12 साल की उम्र तक पहुँचने तक तीन फ्रेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा सुनता है। और उसमें पहला फ्रेज पता है क्या, चुप हो जाओ, और दूसरा है बैठ जाओ, और तीसरा फ्रेज है चले जाओ। आप सोचिए, मतलब आप खुद सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में और चाइल्डहुड पीरियड में सबसे ज़्यादा जो जुमले सुने वो कौन से जुमले हैं। तो वो बच्चा जिसको हम बोलने नहीं दे रहे, वो बच्चा जिसको हम सुन नहीं पा रहे, उसके लिए भी ये काम दुश्वार हो जाएगा कि वो हमें बोलने दे और हमारी बात सुने। तो लिसनिंग एटीट्यूड जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो लिसनिंग एटीट्यूड बच्चों के अंदर डेवलप होता है। तो ये तो उस सवाल का जवाब था कि मेरा बच्चा बात क्यों नहीं सुनता। दूसरी बात है, बच्चों की आपस में सिबलिंग्स राइवलरी है तो ये क्यों होती है और इसको कैसे दूर किया जाए। ये जब आपके यहाँ एक बच्चा होता है तो आप पूरी अटेंशन उसे देते हैं, जैसे ही दूसरा बच्चा लाइफ में आता है तो आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाती है, आप दोनों बच्चों को अटेंशन दे रहे होते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करना कि आप दो को अटेंशन देंगे और पहले वाले को डिसोन नहीं कर रहे, ये बात अंडरस्टैंड करना पहले बच्चे के लिए ज़रा चैलेंजिंग सी बात है। कोई इंसान भी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बच्चे के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो ये देखे। बल्कि मैं अक्सर एक किताब का रेफरेंस देता हूँ, वो किताब, उस किताब का नाम है सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, और उस किताब के अंदर जो ऑथर्स हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्प किस्म की एक स्टोरी सुनाई है। उन्होंने एक इमेजिनेशन अपने रीडर्स को करवाई, उन्होंने कहा कि वो रीडर्स जो मदर्स थीं उनको उसने मुखातिब किया और कहा कि अगर आपके हस्बैंड ये कहें कि मैं दूसरी बेगम लेके आऊँगा तो आपको कैसा लगेगा, और फिर उसके बाद उसने फर्दर उसको डेवलप किया कि अगर वो अक्सर इसका जिक्र करें और एक दिन वाकई दूसरी वाइफ लेकर आ जाएं तो आपको कैसा लगेगा, और फिर जब दूसरी वाइफ आए तो आपको ये कहें कि आपने इसका ख्याल रखना है इसलिए कि ये छोटी है ना, तो छोटी वाली का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप पर है, और फिर एक और काम करें, आपकी कई चीज़ें उनको दे दें और उनसे कहें कि नहीं ये छोटी है ना, तो आप तो बड़ी हैं ना, तो आपके लिए जो जुमला सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जुमला होगा वो जुमला पता है कौन सा है, आप तो बड़ी हैं ना और ये छोटी है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो उस ऑथर ने बड़ा कमाल किया, उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होता है जब दूसरा बच्चा आता है, आप बड़े बच्चे से बड़ी जल्दी ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और आप कहते हैं कि भाई आप बड़े हैं और आपने जो है वो इसका ख्याल रखना है, और आप उससे शेयरिंग डिमांड करते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसे एक इनसिक्योरिटी उसके जहन में पैदा होती है, वो फील करता है कि भाई पहले अम्मी और अब्बू सिर्फ मेरे थे और अब उसके भी हो गए, तो उसके अंदर एक राइवलरी की फीलिंग, वो खुद ब खुद एक जेलसी की फीलिंग एक नेचुरली पैदा होती है। और अगर आप इमोशनली मैच्योर हों और अगर आप समझदारी का मुजाहरा कर रहे हों तो आप इस फीलिंग्स में से उसको बाहर निकाल लेते हैं, और उसका तरीका यह है कि आप बड़े बच्चे के सामने छोटे बच्चे को, जब वो बच्चा इतना छोटा है तो आप मतलब उसको बड़े बच्चे को जो उसकी न्यू वैल्यू है वो मिलनी चाहिए, और बड़े बच्चे से इतनी जल्दी डिमांड नहीं करें कि वो सेक्रीफाइस करें, सेक्रीफाइस डिमांड नहीं करें, सेक्रीफाइस खुद ही वो देगा, शेयरिंग भी आप डिमांड नहीं करें और उसे अंडरस्टैंड करें, और आप इसको देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फील कर रहा है कि मेरे हिस्से की मोहब्बत अब उसे मिल रही है। आपको थोड़ा सा यानी अपने आप पे काम करना पड़ेगा कि आप दोनों को उनके हिस्से की मोहब्बत दे सकें। तो इसका यह है वो सिबलिंग्स राइवलरी वाला क्वेश्चन। इसी तरह तीसरा सवाल यह है कि बच्चों का इस एटीट्यूड जो है वो एग्रेसिव और वायलेंट होता जा रहा है। बात यह है कि अर्बन सोसाइटी में हर एक का एटीट्यूड खराब होता चला जा रहा है, हर एक के बिहेवियर्स में एक दुश्वारी, एक तुंदी, एक रफ बिहेवियर जो है अर्बन सोसाइटी में तकरीबन सब लोगों के रवैये, यानी जो टेम्परामेंट का मसला है वो सिर्फ बच्चों का है या बड़ों का भी है, आपको क्या ख्याल है? बड़ों का भी है, और सिर्फ मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतों का है या सिर्फ मर्दों का है, सबका है, औरतों का भी है, मर्दों का भी है, बल्कि हमारे माशरे में जो बास बड़ी उम्र के लोग हैं उनका भी है। बड़ी उम्र के लोगों के मामले में तो हमें ये कहा गया है कि बुज़ुर्गों के साथ आप, और स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो आपने एक्स्ट्रा केयर करनी है और उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, तो हमें एक थोड़ा सा इशारा मिलता है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए अपने रवैयों को और अपने टेम्परामेंट को ठीक रखना जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, और उसके लिए हमसे ये मुतालबा किया गया है कि हम उनके साथ ज़रा एहसान वाला मामला करें, बेहतर मामला करें, उनको जवाब नहीं दें, उनको रिएक्ट नहीं करें और उनको अंडरस्टैंड करें। लेकिन हो ये रहा है कि हमारी सोसाइटी में वैसे भी टेम्परामेंट का इशू बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसरूफियत बढ़ गई है। जब हम फारिग होते हैं तो भी हम अपने आप को किसी चीज़ में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उसके नतीजे में हमें फ्री टाइम या मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं मिलते, हमें अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता, हम अपने मिजाज पर, अपने मूड पर, अपने बिहेवियर पर गौर नहीं करते और सोचते नहीं कि मुझे जो जिस तरह मैंने बिहेव किया क्या मुझे इसी तरह करना चाहिए था, ये मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये मुझे गुस्से में हो क्यों जा, ये ऐसा क्यों हो जाता है। तो इस बात को गौर करने का मौका ना बच्चों को मिल रहा है ना बड़ों को मिल रहा है, इसलिए कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। तो हमें करना ही चाहिए कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे ब्रेक लेकर आए, रोज़ाना थोड़ा सा फ्री टाइम अपनी लाइफ में, अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर, अपने रूटीन में देखें कि थोड़ा सा फ्री टाइम रोज़ाना अपनी लाइफ में लेकर आइए। इसी तरह वीकली बेसिस पे कुछ स्पेशल फ्री टाइम अपनी लाइफ में लेकर आइए। फिर इसी तरह मंथली बेसिस पर कुछ और एक एक्सक्लूसिव थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ में लेकर आइए। फिर एनुअली अपना एक ऑडिट कीजिए, पर्सनल ऑडिट कीजिए एनुअली, जिसमें आप देखिए कि मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मुझे किन चीज़ों में अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मेरी कौन से मामलात ऐसे हैं जिससे मेरी बीवी या मेरे बच्चे या मेरे पेरेंट्स या मेरे दोस्त या मेरे कुलीग्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे अपने कौन से मामलात को और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये जो फ्री टाइम है जिसमें हम अपने बारे में सोचें और अपने मामलात को और अपने रवैये को और अपने अखलाक को बेहतर करने के ऊपर सोचें, ये हमारे यहाँ इसका मौका कम से कम होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है लाइफ, जो है वो रोलर कोस्टर की तरह है, एकदम तेज़ी से पूरा दिन गुजर जाता है, उसमें फ्री टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा फ्री टाइम अपनी लाइफ में निकालें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप में से वो लोग जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, वो स्ट्रेस जब आता है और प्रेशर जब आता है तो वो जल्दी उसमें जो है वो कह लीजिए कोलैप्स कर जाते हैं, या वो बहुत जल्दी बहुत वल्नरेबल उनका टेम्परमेंट होता है। थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटीज़, थोड़ी सी कुछ और कोई अपनी लाइफ में थोड़ी देर के लिए निकालें, उससे भी एक आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होगा इंशाल्लाह। तो बच्चों के अंदर जो एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम्स या बिहेवियरल इश्यूज या एग्रेशन नज़र आता है, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बड़े हैं, यानी हमारे हमारी जितने हमारी सोसाइटी में एडल्ट्स हैं उनके भी रवैयों के मसाइल हैं, वो हमें देखने की ज़रूरत है। अच्छा, बच्चों के साथ क्या किया जाए, एक बात समझ लीजिए। अब मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड बात आपसे करता हूँ। वो इंसान जिससे आपका ताल्लुक अच्छा है, उस इंसान की आप एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, बल्कि ताल्लुक जो है वो इंसान जिससे आपका ताल्लुक नहीं बना, वो इंसान जो आप कहते हैं कि मुझे आप उस इंसान वो इंसान आपका पसंदीदा आदमी नहीं है। अगर किसी बच्चे के फादर उसके पसंदीदा इंसान नहीं हैं तो उन फादर की एक्सपेक्टेशंस उसके लिए कोई अहमियत भी नहीं रखती। तो अगर हम अपने बच्चे की तरबिया करना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चे का पसंदीदा इंसान बनना होगा, हम अपने बच्चे को पसंद आएं, यानी हमारा बच्चा हमसे बहुत अच्छी तरह उसकी बॉन्डिंग हो, हमारा रिलेशनशिप इंजॉयबल हो, हम अपना टाइम हैप्पीली एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहें, हम एक दूसरे के साथ बात करना चाहें। और वो बच्चा जो ताल्लुक़ को तरसा हुआ है, वो बच्चा जिसको उसकी फैमिली ने वैल्यू नहीं दी है, जिसकी फैमिली ने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, उसके साथ भी रवैयों के बड़ा चैलेंज होता है। मैंने अभी पिछले दिनों किसी सर्कल में एक क्वेश्चन किया, मैं आपसे भी बल्कि ये पूछता हूँ, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने टीन एज में इतना फ्रस्ट्रेशन और बाज़ बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, बाज़ बच्चे बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, बाज़ बच्चे बहुत स्ट्रेस में होते हैं, इम्तहान का स्ट्रेस, कोई और सिचुएशन जिसकी एंग्जाइटी, बाज़ औक़ात किसी और चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, और उसके नतीजे में एक रुझान हमारी सोसाइटी में है, बहुत से बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोग किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने अपने आप को हर्ट किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, कितने लोग ऐसे बच्चे को जानते हैं? अच्छा, औरतें ज़्यादा जानती हैं, मर्द नहीं जानते हैं? या जानते हैं? आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की हो, अपने आप को कट लगा लिया हो, अपनी कोई अपने आप को? चले मैं एक और बात कहता हूँ, आप कितने ऐसे इंसानों को जानते हैं जो अपने आप को कर्स करते हैं, अपने लिए बुरा जुमला कहते हैं, अपने बारे में कोई बुरी बात कहते हैं? मैं तो बहुत ख़राब हूँ, मैं तो बहुत बस, मैं तो ऐसे ही हूँ, अपने आप को कोसते हैं। बात समझ आ रही है? हमारी सोसाइटी में ये रुझान बढ़ रहा है, और इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर मैं इसको ज़रा टेक्निकल वर्ड्स में बताऊं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने अपनी देखिए, वो बच्चा जिसकी फैमिली उसको वैल्यू ना दे पाए, उस बच्चे के लिए संभलना दुश्वार होता है। फैमिली क्यों वैल्यू नहीं दे पा रही? इसलिए कि बच्चे के नंबर कम हों। अगर किसी बच्चे के नंबर कम हों तो सोसाइटी उसके साथ जिस तरह का सलूक करती है, उसके नतीजे में बच्चा साइकोलॉजिकली अनफिट हो जाता है, साइकोलॉजिकली सिक बना देते हैं। एक बच्चा जो एकेडमिकली किसी एकेडमिक वीकनेस में था, हमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि अब वो साइकोलॉजिकली सिक हो गया। पहले सिर्फ उसका मैथ्स कमज़ोर था, अब वो नफ्सियाती तौर पर भी कमज़ोर हो गया है। पहले सिर्फ उसकी अंग्रेज़ी या उर्दू कमज़ोर थी, अब वो इमोशनली वीक हो चुका है, साइकोलॉजिकली वीक हो चुका है, टेम्परमेंट का इशू उसके साथ हो चुका है, वो नेगेटिविटी का एक आर्जा उसके अंदर पैदा हो गया है, वो नेगेटिव थिंकिंग का एक मरीज़ बन गया है। आप सोचें ये हमारी सोसाइटी में कितना कॉमन है। तो हम अपने बच्चों को वो उनकी वो रिस्पेक्ट करें और उनको वो मोहब्बत दें, उनको वो प्यार करें जो उनका हक है। ये वो रिस्क है जो बच्चे अपने माँ बाप से वसूल करते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को गले लगाएं, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों को वैल्यू दें। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए हैं या फेल हुआ है, सबसे ज़्यादा गर्म जोशी से गले लगाए जाने की ज़रूरत उसको उसी दिन तो है जिस दिन वो फेल हुआ है। अगर आपने अपने बच्चे को जिस दिन उसके नंबर कम आए थे या फेल हुआ था, आप बुलाएं, इधर आओ और गले लगा लें टाइटली, उसके बाद उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि वो दोबारा खड़ा हो सके, उसके बाद उसके अंदर वो इमोशनल एक बैलेंस आएगा, उसके बाद उसका टेम्परामेंट, उसके बाद सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की लियाकत उसके अंदर पैदा होगी। वो बच्चा जो फेल हुआ है, वो बच्चा जो किसी प्रॉब्लम में है, वो बच्चा जिसने आपसे कहा था कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, आपने कहा नहीं नहीं कॉन्सर्ट में नहीं जाने दूंगा, वो एक सदमे से दो चार है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाने दें, अगर कोई चीज़ आपके वैल्यूज़ पर पूरी नहीं उतर रही, आप नहीं करने दें। लेकिन एक बच्चा जो किसी काम को करना चाहता था, उसको वो मौका नहीं मिला, तो वो बच्चा किस कैफियत में है? गम में, खुशी में, किस में? गम में ना। तो आप उस बच्चे को कम से कम गले तो लगाएं, आप उससे ये तो कहें, हाँ मुझे एहसास है, तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा, तुम चाह रहे थे कि तुम चले जाओ, तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुम मेरी खातिर नहीं गए, मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम नहीं जाओ और तुम मेरी वजह से तुम रुक गए, फला तुम अपने दोस्त के यहाँ नाइट स्पेंड करना चाहते थे, मैंने तुम्हें कह दिया तुम नहीं जाओ, तुम्हारी बड़ी बात है कि तुमने मुझे अंडरस्टैंड किया, तुमने मुझे फॉलो किया, मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम नाइट स्पेंड करो अपने दोस्त के यहाँ, मैंने तुम्हें रोका, तुम रुक गए, तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा था और तुम्हें बहुत अजीब लगा, बुरा लगा, तुम्हें गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात मानी, तुम्हारी बड़ी बात है, आओ ज़रा गले लग जाएं और गले लगा लें। आपके इंटरेक्शन में रिस्पेक्ट जो है, अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करना, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ये एक अपने बच्चे से इख्तलाफ करें, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप अपने बच्चे को नो कहें, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप अपने बच्चे की बात ना माने, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप अपने बच्चे को उस काम की इजाज़त ना दें जो आपको ठीक नहीं लगता, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके घर में भिंडी बनी हुई है या लौकी बनी हुई है और वो चाहता है कि बर्गर बाज़ार से मंगवा के खाए, जिंगर बर्गर, आप उसको जिंगर बर्गर ना ला के दें और कहें तू भिंडी ही खा, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसको पैसे ना दें ज़्यादा, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात यह है कि आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट ना कर पाए। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है, लेकिन उसको ठीक अंदाज से कीजिए। हमारा मसला यह है कि हम वो करते हैं जो हमें ठीक लगता है, लेकिन इस काम को बुरे अंदाज से करते हैं। हम ठीक काम गलत तरीके से करवाना चाहते हैं, हम डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में अपने बच्चे से बात करते हैं, हम उसको छोटा समझते हैं, गुलाम समझते हैं, अपना सबऑर्डिनेट समझते हैं। देखिए, बच्चों को ये ज़रूरी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की इताअत करें, ये ज़बरदस्त बात है और ये करना है, इसका दीन ने हमें हुक्म दिया है अपने वालदैन की इताअत करें। लेकिन वालदैन को ये हुक्म नहीं दिया है कि अपने बच्चों से अपनी इताअत करवाओ। दिलचस्प बात है, वालदैन को दीन ने ये नहीं कहा कि अपने बच्चों को अपना फर्मा बरदार बनाओ, बल्कि उनको ये कहा है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबिया करो। अच्छी तरबिया के अंदर ये काम खुद ब खुद होगा। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबिया करेंगे तो फर्मा बरदारी उसका नेचुरल आउटकम होगा। तो अगर आप अपने बच्चों को फर्मा बरदार बनाने का गोल बना लेंगे तो बच्चा फर्मा बरदार नहीं बनेगा। कोई भी इंसान अपने पेरेंट की खिदमत और अपने पेरेंट से मोहब्बत और अपने पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा उसको कह लें उसकी इताअत करने का जज्बा क्यों पैदा होता है, उसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि अपने पेरेंट के साथ उसकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, बड़ी इंजॉयबल रिलेशनशिप थी, इसीलिए नेचुरली वो अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी उम्र में भी अटैच्ड है। वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज हाउस में नहीं भेज रहा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है, उनकी खिदमत करना चाहता है। जब वो बीमार पड़ते हैं तो खुद उनको इलाज के लिए लेके जाता है, अपने हाथ से दवाई खिलाता है, अपने हाथ से उनकी खिदमत करता है, उनकी टांगे दबाता है। ये वो बच्चा है जिसके अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। एक तो वजह ये होती है। दूसरी वजह, दो फैक्टर्स हैं कि कोई इंसान अपने पेरेंट्स की खिदमत और मोहब्बत की उसके अंदर रुझान पैदा हो। एक तो ये है कि वो पेरेंट्स की बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी उनके साथ। दूसरा यह है कि दीन उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। जब दीन आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, अगर आपकी अपने पेरेंट्स से अच्छी रिलेशनशिप नहीं भी थी और दीन आपके लिए अहम हो गया है, तो दीन ने आपको ये बताया है कि ये जो भी कह रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं, जैसे भी हैं, गलत हैं या सही हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तुमने उफ नहीं कहना है। तो ये बात, ये डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन पे अमल करना आसान बात थोड़ी है। इस डिसिप्लिन पे तो जब अमल करेंगे जब दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर पेरेंट्स, तो ये दोनों फैक्टर्स हम अवेलेबल करें, बच्चों के इंशाल्लाह रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बनेंगे, उनको जो है वो उनके मसला, उनका जो एटीट्यूड का है वो इंशाल्लाह हल होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और सवाल था, पढ़ाई में बच्चा रिजिस्ट करता है तो क्यों करता है, पढ़ना क्यों नहीं चाहता, पढ़ाई का क्या मसला है? सबसे पहली एक और बात हमें समझने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग का जो सबसे अहम गोल है वो ये नहीं है कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े। अच्छी पेरेंटिंग का सबसे बड़ा गोल क्या है? हम पेरेंटिंग के तीन ग्रेटर गोल्स बयान करते हैं, उन तीनों में पढ़ाई या स्टडी नहीं है। स्टडी भी एक गोल है लेकिन वो बात का गोल है। जो सबसे अहम बात है उसको सबसे अहम जगह पे रखने की ज़रूरत है। तो पेरेंटिंग के तीन ग्रेटर गोल्स जो हम डिफाइन करते हैं वही एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स हैं। ERDC अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 19 साल से पेरेंटिंग के तीन ग्रेटर गोल्स पे काम कर रहा है और इस पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। बहुत से इदारों को अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तौफीक हुई, वो हमसे जुड़े हैं और फिर वो इस पूरे फ्रेमवर्क को उन्होंने लिया है और वो इस पे काम कर रहे हैं। ये तीन ग्रेटर गोल्स क्या हैं? पहला ग्रेटर गोल है कॉन्फिडेंस अपने बच्चों का डेवलप करें, कॉन्फिडेंस। दूसरा गोल है अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को नर्चर करें। और तीसरा गोल है अपने बच्चों के कैरेक्टर को बिल्ड करें। तो कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर, इन तीनों पे काम करना, ये तीन ग्रेटर गोल्स हैं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन का नाम है कॉन्फिडेंस। आप किसी बच्चे को दुनिया में जितनी डिग्रियां हैं सारी दिला दें, सारी डिग्रियां दिला दें, आपके जहन में जितनी बड़ी अच्छी डिग्रियां ना सारी दिला दें आप किसी बच्चे को, फर्ज करें सारी ले लेता है और कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, वो नहीं चल पाएगा। इसी तरह जिंदगी और दुनिया जितनी अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है उसके लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। इसी तरह जिंदगी को बामानी तौर पर गुजारने के लिए, जिंदगी के अंदर एक इत्मीनान को हासिल करने के लिए आपको एक बड़े कैरेक्टर पे खड़े होने की ज़रूरत है। तो क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर जो है पेरेंटिंग के तीन ग्रेटर गोल्स हैं। तो पढ़ाई जो है वो बात की बात है, बहुत मुमकिन है कि किसी बच्चे इनके नंबर कम हैं या वो पढ़ाई नहीं कर रहा। अगर एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या मुझे ऐसा सलूक करना चाहिए जिसके नतीजे में पढ़ाई में तो ये अभी पीछे है, कॉन्फिडेंस में भी कमज़ोर हो जाए? क्या मुझे ऐसा सलूक करना चाहिए या मुझे ऐसा सलूक करना चाहिए कि कम से कम इसका कॉन्फिडेंस तो सलामत रहे, पढ़ाई वढ़ाई अगर इसकी कमज़ोर भी है कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो ये इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में ठीक तरीके से गुजार लेगा। क्या ख्याल है? आप हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे 10 लोगों की फहरिस्त बनाइए जो इस दुनिया में कोई बड़ा काम कर रहे हैं और फिर पता कीजिए उनके क्लास 4 में क्या परसेंटेज आई थी, मैट्रिक में क्या रिज़ल्ट आया था। आपको पता लगेगा कि ये बात इतनी अहम नहीं है जितनी दूसरी चीज़ें अहम हैं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो आप उसको पढ़ाई पे फोर्स नहीं करें, बल्कि आपका काम यह है कि आप उसको ऑप्शंस दें। आप उसको बताएं, देखो ये जो बोर्ड का रिज़ल्ट होता है ना, मैट्रिक या ओ लेवल्स या ए लेवल्स, ये एक तरह का पासपोर्ट होता है, ये एक तरह का वीज़ा होता है। अगर तुम्हें प्रोफेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसका वीज़ा जो है ना, ये इसका रिज़ल्ट जो है ना वो इसका वीज़ा है। अगर तुम वाकई जाना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि तुम्हें ये काम करना है। और दूसरी बात उसको ये बताएं, कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहें कि ओ लेवल्स बहुत मुश्किल है या मैट्रिक बहुत मुश्किल है या मैथ्स बहुत मुश्किल है या फिज़िक्स बहुत मुश्किल है या फला पेपर बहुत मुश्किल है या इंटरमीडिएट बहुत मुश्किल है। ये कभी नहीं कहें आप, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुमसे कैसे होगा, तुमसे कैसे होगा। जितनी दफ़ा आप ये जुमला बोलते हैं ये काम तुमसे कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है, उतना ही आप अपने बच्चे के लिए मुश्किल आप पैदा करते हैं। आपको ये कहना चाहिए ये ओ लेवल्स का पेपर, ये मैथ्स, ये साइंस, ये इंग्लिश, ये उर्दू, नो बिग डील। मुझे पता है कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इससे कहीं ज़्यादा सलाहियत रखी है, तुम तो बड़े बड़े काम कर सकते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, कर लोगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 7वीं 8वीं तक अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन ओ लेवल्स में या मैट्रिक में उन्हें एकदम समझ आई, उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। दे एक्सेप्टेड द चैलेंज, दे वर्क हार्ड, दे स्टडीड स्मार्टली एंड दे प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी बात यह कि जो स्टडी टेक्निक्स हैं, बच्चों को ऐसे वर्कशॉप्स और ऐसा मटेरियल दीजिए जो हाउ टू स्टडी के ऊपर बहुत सी किताबें हैं। हाउ टू स्टडी, अगर कोई चीज़ याद करनी है तो उसको याद करने की ट्रिक्स क्या हैं, अगर कोई चीज़ समझने के बाद जहन में बिठानी है तो उसकी टेक्निक्स क्या हैं, अगर अपनी बात को समराइज करना है तो उसके उसूल क्या हैं, अगर बहुत सारा कोर्स है और कम दिन में उसको स्टडी करना है तो उसकी प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगी, या अगर आप कोई किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने में ऑर्डर क्या होना चाहिए। कुछ किताबें ऐसी हैं और ये बहुत बड़ा, देयर इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन विच यू कैन से बुक्स ऑन स्टडी टेक्निक्स, साइंस ऑफ स्टडीइंग, ठीक है, यानी सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में एक किस्म की किताब है जिसको कहते हैं कैसे पढ़ूं कैसे सीखूं। इस तरह की किताबें अपने बच्चों को दिलाइए, और इसमें बहुत सारी किताबें, यानी मिसाल के तौर पर एक किताब है स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। मैं ये समझता हूं कि हर बच्चे के घर में ये किताब होनी चाहिए और आते जाते हुए वैसे ही कभी किताब खोलें, कोई सफ़ा निकालें और उसमें देखें, अच्छा इतना खूबसूरत इसमें लिए हुए कुछ टिप्स, कंसंट्रेट कैसे करूं, अच्छा कंसंट्रेट करने के ऊपर ये 4 टिप्स दी हुई हैं, इस पर अमल करूंगा कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी। इस तरह का कुछ मटेरियल, ये केविन पॉल की किताब है, इसी तरह बहुत सारी किताबें। तो आप इस तरह की किताबें खरीदें, अपने बच्चे को स्टडी को हवा नहीं बनाएं। अब देखें मैंने 3 बातें की स्टडी के ऊपर। पहली बात, स्टडी अहम है, लेकिन سب سے زیادہ اہم نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم نہیں ہے. یعنی اگر کسی بچے کا، اب میں مجھے آپ بتائیے، اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے اور اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے تو ہمیں زیادہ دکھ کس چیز پہ ہوگا؟ کس چیز پہ ہوگا؟ اور ہمیں اصل میں دکھ ہونا کس چیز پہ چاہیے؟ کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہمارا مسئلہ، ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے، ہم بالکل الٹی مطلب انداز میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جو چیز سب سے اہم ہے اس کو سب سے اہم رکھیں، پھر اس کے بعد جو چیز اہم ہے اس کو رکھیں، پھر اس کے بعد جو اہم ہے اس کو رکھیں. تو پڑھائی اہم ہے لیکن بہت اہم نہیں ہے، پہلی بات. اور کانفیڈنس، کریٹیویٹی اور کیریکٹر، اگر پڑھائی نہیں بھی ہے تو اس کو تو ڈیولپ کریں، یہ ایک بات ہے. اب دوسری بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھے تو اس کو بتائیں بیٹا یہ پڑھنا تمہارے لیے اس لیے ضروری ہے، تم پڑھائی بھی کرو گے، اگر تم پڑھائی کرو گے تو تمہارے لیے یہ راستے کھلیں گے، نہیں پڑھو گے تو یہ والا آپشن بند ہو جائے گا، لیکن زندگی بند گلی میں نہیں آئے گی. ہر بچے کو یہ بات پوری ایمانداری سے بتائیے کہ بیٹا اگر تم نے نہیں بھی پڑھا، اگر تم فیل ہو گئے، اگر تم میٹرک یا انٹر یا او لیولز یا اے لیولز نہیں بھی کر پائے تو غم کی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ زندگی بند گلی میں تمہیں نہیں لائے گی، دیر ول بی ہنڈریڈ آف ادر آپشنس، تمہارے اندر بہت صلاحیت ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، تم کر سکتے ہو انشاءاللہ. لیکن یہ او لیولز اور میٹرک یا اے لیولز تمہارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ تم یہ والے راستے تمہاری لائف میں بند نہ ہوں، یہ یونیورسٹی کالج والا جو، اس میں کچھ بہت ساری اچھی چیزیں تمہارے لیے انتظار میں ہیں، اگر تمہیں وہاں جانا ہے تو پھر یہ راستے کے لیے تمہیں سیریس ہونا ہوگا، یہ اسے بتا دیں اور اس پہ ٹرسٹ کریں. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ پڑھائی کو ہوا نہیں بنائیں، اسے ڈرائیں نہیں. چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی کی ٹیکنیکس، ہاؤ ٹو اسٹڈی کی سائنس، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں، اب تو اسمارٹ فون میں بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ براؤز کریں گے تو کچھ چیزیں آپ کو مل ہی جائیں گی. ہم بھول کیوں جاتے ہیں اور یاد کیسے رکھتے ہیں، ہم اپنی بات کو بہت اچھے مینر میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، ہم اپنی جو کچھ بھی نالج ہے اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں، ایک بہت لیندی کورس کو ریوائز کرنے کے ٹپس کیا ہیں. آپ بتائیے یہ چیزیں بچوں کے لیے کام کی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا خیال ہے؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے، پڑھائی کو ہوا بنا دیتے ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو، اور جس بچے کے نمبر کم ہیں اس کو گلے نہیں لگاتے، اس کو کہتے ہیں بھائی تو تو بس میرے لیے بہت مسئلہ ہے. اس قسم کی چیز نہیں کریں. تو یہ اسٹڈی کے اوپر میں نے کچھ بات عرض کر دی. اگلا سوال یہ تھا کہ بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں، اس کا کیا کریں؟ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے گھر میں، اس بچے کے گھر میں کوئی ایسا انسان تو نہیں رہتا. میرے پاس، میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا میرا بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا، تو اس کو میں کیا کروں؟ یا کسی نے کہا میرا بچہ پھل نہیں کھاتا تو میں چاہتی ہوں پھل کھائے، تو وہ کیوں نہیں کھاتا کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی یہ بتائیے، ان چیزوں کے نام بتائیے جو اس کے ابو نہیں کھاتے، ان چیزوں کا نام بتائیے جو آپ نہیں کھاتی، اس کی دادی نہیں کھاتی، اس کے دادا نہیں کھاتے، انہوں نے نام بتایا. چلیں دادی دادا کو چھوڑ دیں، امی اور ابو وہ چیزیں جو نہیں کھاتے، ڈس لائکڈ فوڈ، کئی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا میں جو ہوں وہ چاول نہیں کھاتی، ان کے ابو جو ہیں وہ چکن نہیں کھاتے، وہ یا فلاں چیز نہیں کھاتے، یا ہم جو ہے وہ فلاں سبزی نہیں کھاتے. اس قسم کی چیزیں بچے ہم سے سیکھتے ہیں، تو بچے جب چھوٹے ہوں تو ان کو ہر چیز ٹیسٹ کروائیں بازار کی چیزوں کے علاوہ، گھر پہ بنی ہوئی چیزیں. اور وہ بچہ، اگر کوئی بچہ کچھ نہیں کھا رہا تو اس کو اس بات پہ پریشان نہیں کریں کہ تم نہیں کھاتے. اگر کسی بچے نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے یہ جملہ بار بار سنا ہے، تم تو کھاتے ہی نہیں ہو، تم تو کچھ نہیں کھاتے ہو، جتنی دفعہ آپ یہ جملہ بولتے ہیں اتنی دفعہ نہ کھانے کا ایٹیچیوڈ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، کھانے سے بیزار کر دیتے ہیں آپ، کوئی انسان اریٹیٹ ہو جاتا ہے اس جملے سے. تو آپ اس کے لیے اگر ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس رکھنی ہے تو آپ کو اپنی پیکجڈ فوڈ لانا بند کر دیں، فاسٹ فوڈ سے ذرا پرہیز کریں، اپنی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک کریں، اور جو گھر کا پکا ہوا ہے اللہ کا شکر کر کے کھائیں، ہیلدی چیزیں کھائیں، بیٹھ کے ڈسکس کریں. ایک اور چیز بھی، اس کو شعور کی سطح پہ ڈسکس کریں. ایک بچہ جو، اگر کوئی بچہ ये मानता ही नहीं है, या कोई भी इंसान, यानी मैंने एक किसी से पूछा कि भाई आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं, उन्होंने कहा सर मैं तो बहुत हेल्दी चीज़ें खाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो बैठे हुए पेप्सी और वो चिप्स के पैकेट से चिप्स खा रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कितना हेल्दी है, उसके ऊपर लिखा हुआ था हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी हेल्दी स्नैक्स। तो बहुत से लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी। तो पहले तो ये रियलाइज़ करवाएं कि ये हेल्दी है और ये हेल्दी क्यों है, और ये अनहेल्दी है और अनहेल्दी क्यों है। दूसरी बात ये कि वो बच्चा ये रियलाइज़, बल्कि वो बच्चा इसकी वॉन्ट अपने अंदर डेवलप करेगा, आई शुड ईट हेल्दी फूड। वो बच्चा जिसके अंदर ये डिज़ायर ही एग्जिस्ट नहीं करती कि मैं अच्छी हेल्दी चीज़ खाऊं, उसको आप ज़बरदस्ती ये काम नहीं करा सकते। तरबिया पता है किसे कहते हैं? तरबिया जो है ना, अपने इख्तियार, यानी मैं अपने इख्तियार की ज़रबें अपने बच्चे की खुदी पे मारूं, ये तरबिया नहीं है। यानी मैं अपने बच्चे पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर दूं, मैं अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार के ज़ोर से इसको ज़बरदस्ती अच्छे काम करवा दूं और बुरे कामों से रोक लूं, मैं इनाम के लालच में इसको फजर की नमाज़ें पढ़वा दूं, मैं इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी बुरे काम से रोक लूं, कुछ लालच दे के कुछ अच्छे काम करवा लूं, दैट इज़ नॉट तरबिया, दैट इज़ नॉट तरबिया। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये अब तरबिया कहते हैं अपने इख्तियार का सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करने को। अल्लाह ने आप सबको एक इख्तियार दिया है, आप अपने इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, यह है तरबिया। तरबिया ये नहीं है कि मैं अपना इख्तियार, मेरा बेटा है, मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उसको गलत काम ना करने दूं और सही काम ज़बरदस्ती करवाऊं। कितने दिन करवा लूंगा, कितने दिन? एक दिन तो वो आज़ाद होगा ना मुझसे, एक दिन कहेगा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब हटें आप, फिर वो करेगा जो वो चाहता है कि वो करे। तो तरबिया ये है कि मैं अपने बच्चे से ये, यानी वो अपने इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए। ये फूड चॉइसेस के अंदर भी है, ये लाइफ की हर चॉइस के अंदर है, खाने पीने के अंदर भी यही बात है। तो ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा कि मेरे बच्चे का अपने बच्चे से बहुत गहरा ताल्लुक बने, मैं अपने बच्चे का पसंदीदा इंसान बन जाऊँ और अच्छी चीज़ें और अच्छे काम मेरी पसंद बन जाएं। आप सोचें कितना आसान फार्मूला है, अच्छे काम अच्छी चीज़ें मेरी पसंद बन गई और मैं अपने बच्चे का पसंदीदा इंसान बन गया, तब तरबिया हो पाएगी और मेरा बच्चा अपने इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल, सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना सीखेगा इंशाल्लाह। फिर उसके लिए दुआ करें। तो ये फार्मूला है। तो खाने के मामले में भी इसी तरह एक सवाल यह है कि भाई आज के बच्चे गैजेट से बहुत उन्हें इश्क हो गया है, स्क्रीन से, क्या ख्याल है इसमें? तो मेरा ख्याल है पूरा माशरा, अब इसमें दो बातें हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को मोबाइल फ़ोन और गैजेट और टैबलेट से इश्क हो गया है और वो मुस्तकिल एडिक्शन हो गई है, तो दो तीन बातें समझने की हैं। पहली बात, गैजेट्स का और मोबाइल फ़ोन का और स्क्रीन का इस्तेमाल, ये बहरहाल उसे करना है, वो करेगा। चैलेंज ये है कि उसको इश्क हो गया, चैलेंज ये है कि एडिक्शन हो गई, तो हमें एडिक्शन से रोकना है, हमें मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन के बायकॉट की तरफ नहीं लेके जाना है। मतलब अगर आप ये कराना चाह रहे हैं कि 15 साल की उम्र के बच्चे को, हाँ आप ये कर सकते हैं कि 7-8 साल की उम्र तक, 9 साल की उम्र तक एक बच्चे की लाइफ में मोबाइल, गैजेट्स, टैबलेट, टीवी, इनको बहुत मिनिमम, यानी बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर, ये ना हो तो बहुत अच्छा है, या हो तो बहुत ही कम हो और बहुत ज़रूरतन हो, दैट्स ओके। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। अब जो काम, जो चैलेंज है वो ये है कि बेटा ये तुम्हारे इस्तेमाल में हो, ये तुम्हारे हाथ में हो, तुम इसके हाथ में ना हो। काम ये है कि तुम्हें ये इस्तेमाल करना है, इसको ये इजाज़त ना दो कि ये तुम्हें इस्तेमाल करे, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है। पहली बात तो इसको डिस्कस करें कि एडिक्शन इसकी क्या होती है। दूसरी बात ये करें, जो मोबाइल फ़ोन और इन चीज़ों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ का नशा हो जाए, खुदा ना खास्ता, या किसी भी इंसान को किसी चीज़ का नशा हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई भी बुरी चीज़, आप अपने जहन में ज़रा इमेजिन करें कोई बुरी चीज़ जिसका किसी इंसान को नशा हो गया, उससे बचाने के लिए उसको क्या चीज़ करनी पड़ेगी? तीन काम करने पड़ेंगे, तीन काम। उसमें से एक काम यह है कि वो ये माने कि ये नशा है, ये बुरा है, और ये नशा मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे अपने आप को इससे बचाना है, ये एक काम है, ये एक काम है उसमें से। ये तो हम गुफ्तगू से, मुकालमे से, डिस्कशन से, ये हम शऊर पे काम करेंगे उसके साथ, ये एक काम हो गया। इसके अलावा दो बड़े अहम काम और हैं। फ़र्ज़ कीजिए किसी इंसान को नशा हो गया किसी चीज़ का, अगर वो इस कंडीशन में है कि वो समझ सकता है और नशे में इतना धुत नहीं है, तो मैं उसके साथ मुकालमा करके उसको शऊर की सतह पे ये बताऊं, तुम्हें वो माने, वो तस्लीम करे, मुझे नशा हो गया, गलत चीज़ का नशा हो गया और मुझे इस नशे से बचने की ज़रूरत है, मुझे इसको छोड़ना चाहिए। ये पहली चीज़ है। बाकी दो काम पता है क्या है? बाकी दो काम क्या वो हैं, कौन फाइनेंस कर रहा है इस नशे को, फाइनेंसर को पकड़ें, हु हैज बॉट दिस, हु हैज प्रोवाइडेड ऑल दिस स्टफ। उसने बगैर किसी कंडीशन के, बगैर किसी कह लीजिए गाइडलाइन के, बगैर किसी कह लें उसके इस्तेमाल करने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसका, उसका कोई कह लें उसके इस्तेमाल के कुछ आदाब होंगे, किसी किस्म की कोई चीज़ तय किए बगैर उसको वो चीज़ पकड़ाई है, उसको पकड़ें, उसको वहाँ से वो चीज़ ठीक होगी। यानी हर थोड़े दिन के बाद जो नया मॉडल उसको ख़रीद के देता है उसको पकड़ें, वो ठीक होना चाहिए। तीसरी बात, अगर किसी एडिक्ट को, वो बच्चा जिसे मोबाइल एडिक्शन हो गई है, उसको किसी मोबाइल एडिक्ट जो कि उसके अपने इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है उससे बचाएं। जब बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि मेरे बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गई है, तो बताने वाले को भी हुई भी होती है, तो नशा ही नशा ही को नशे से नहीं रोक सकता, क्या ख्याल है? बात समझ आ रही? तो इस चीज को जरा देखें।
और एक सवाल मेरा ख्याल है और है जो आपका था, हाँ,
वो बच्चे जो शाइनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हैं उनके साथ क्या किया जाए। अच्छा, शाइनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दो अलग चीज़ें हैं। शाइनेस जिसे हम उर्दू में शर्म कहते हैं, ये एक फितरी रुझान है, एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसको हम शाइनेस कहते हैं। शाइनेस इज नॉट द ऑपोजिट स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, शाइनेस एंड कॉन्फिडेंस कैन को एग्जिस्ट। वेस्ट में कॉन्फिडेंस जिस तरह डिफाइन होता है, वहां कॉन्फिडेंस के लिए बेशरम होना जरूरी है। हमारे ईमानी तनाजुर में कॉन्फिडेंस पे खड़े होने के लिए बेशर्मी जरूरी नहीं है। बात वाजे हो रही है? वेस्ट में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट आदमी वो है जो इतराता रहता है। कॉन्फिडेंस किसे कहेंगे? कॉन्फिडेंस कहते हैं आप अपने आप को अहम समझें, अपने जज्बाए इंकसारी की सलामती के साथ। कॉन्फिडेंस ये है कि आप अपने आप को अहम समझें, दूसरे को हकीर समझे बगैर। कॉन्फिडेंस ये है कि आप अपने आप को अहम समझें और दूसरे को भी अहमियत दे पाएं। बात समझ आ रही है? कॉन्फिडेंस ये है कि आप अपने आप को अहम जानें इनकिसारी और आजजी की सलामती के साथ। कॉन्फिडेंस ये है कि आप नाज करने की दुरुस्त वजह पे फायज हो जाएं। अपने आप को अहम समझने की कोई बामानी रीजन दरियाफ्त कर लें, यह है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो है वो जब किसी बच्चे पे ट्रस्ट किया जाता है, जब किसी बच्चे को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस सलामत रहता है। दीन ने जो, जिसे हम ट्रूली इस्लामिक सोसाइटी कह सकते हैं इन इट्स ट्रू सेंस, वो जो इस्लामिक सोसाइटी होती है ना, वो एक चीज़ को गारंटी करती है, एक चीज़ को प्रोटेक्ट करती है एट एनी कॉस्ट। और वो चीज़ पता है क्या है? इस्लामी माशरा जिसे कहा जाता है, वो पता है किस चीज़ की जमानत देता है? वो कहता है हर मुसलमान की, बल्कि हर बंदे की इज्जत नफ्स और जान और माल को हम प्रोटेक्ट करेंगे। पता है? और इज्जत नफ्स बहुत अहम है, वो मुसलमान और नॉन मुस्लिम दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब इंसानों की सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्टेड होती है तो वो साइकोलॉजिकली सही रहते हैं। जब हम किसी बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक करते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है, वो अपना बैलेंस लूज कर देता है, उसके नतीजे में उल्टी सीधी हरकतें करता है और उसी के नतीजे में उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। تو بچے پیدائشی طور پہ رب کریم نے انہیں بے باک اور بے خوف بنایا ہے، پیدائشی طور پر بچے جو ہیں وہ بہت اوپن، بہت کینڈڈ، بہت اسپونٹینیس، بالکل ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. پھر آہستہ آہستہ ہم انہیں اپنا خوف، اپنا ڈر ان کے اندر بٹھاتے ہیں، چیزوں کا ڈر وہ ان کے اندر بٹھاتے ہیں. تو کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ ڈریں سوائے اللہ کے، یہ کانفیڈنس ہے. تو کانفیڈنس جو ہے وہ ایمان ہی، ایمان کے نتیجے میں جو سائیکی، جو ہیومن سائیکی فارم ہوتی ہے اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں. مسلمان کا کانفیڈنس اللہ پر کامل ایمان کے نتیجے میں جو ہیومن سائیکی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا نام ہے. بات واضح؟ تو کانفیڈنس اور شائنس، تو شائنس جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی. شائنس یہ ہے کہ میں اپنی لائف کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، میں غیر ضروری طور پر کسی سے فری نہیں ہونا چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے غیر ضروری طور پر فری ہو. تو یہ انسان کے اندر جو شرم کا مادہ ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے. رب کریم نے انسان کے اندر اپنے آپ کو چھپانے کی، کنسیل کرنے کی، اور اپنی کچھ چیزوں کو نہ دکھانے کی، نہ پورا کا پورا نظر آ جاؤں اور پورا کا پورا دکھ جاؤں اور پورا کا پورا کھل جاؤں، اس کے یہ والا رجحان انسان کے اندر نہیں رکھا. یہ فطری رجحان نہیں ہے. فطری رجحان یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کھلے گا صرف اس انسان پہ جو بہت قابل اعتماد ہے اور بہت سارا اندر سے چھپا رہے گا. اور اس فطری جذبے کو، یہ اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز، اننیسیسریلی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. تو شرم از ناٹ اے بیڈ تھنگ، اینڈ شرم اور شائنس از ناٹ دا اپوزٹ اسٹیٹ آف کانفیڈنس. آر یو گیٹنگ دس پوائنٹ؟ یہ پوری بات تو آپ کو واضح ہو رہی ہے. تو شرم جو ہے یش، وہ بعض جانوروں میں بھی ہوتی ہے، شرم بعض پودوں میں بھی ہوتی ہے، بعض پھولوں میں ہوتی ہے. تو شرم جو ہے جب نور ایمانی سے منور ہو جائے تو حیا پیدا ہوتی ہے. شرم وہ نیچرل ٹریٹ ہے جس کے ایمان سے، جب ایمان کے ساتھ یہ نیچرل ٹریٹ وابستہ ہوتا ہے تو حیا بنتی ہے. حیا اور شرم، حیا جو ہے وہ شرم کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حیا اس باڈی لینگویج کا نام ہے جو نیچرل ٹینڈنسی آف شائنس کے اوپر بلڈ اپ ہوئی ہے ایمان کے نتیجے میں. تو حیا از ناٹ این ایکٹ، حیا از اور باڈی لینگویج. حیا تو ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے، ہماری باڈی لینگویج میں ہوتی ہے، ہمارے سوچ کی پاکیزگی میں ہوتی ہے، ہمارے قلب کے اندر جو عزائم اور جذبات اور خواہشات ہیں ان کی خوبصورتی میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ، تو اس اب بچوں کو کیسے ڈیولپ کریں، یہ کوئی انشاءاللہ مشکل کام نہیں ہے. بس ان پر اعتماد کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. ایک بات میں آپ کو بہت دلچسپ بتاؤں، آپ اس معاشرے کا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جس کے بارے میں سب کہتے ہوں کانفیڈنس کی کمی ہے، شائع ہے، شائع ہے، شائع ہے. یعنی کیونکہ ہمارے معاشرے میں شائنس اور کانفیڈنس سب ملایا ہوا ہے، چیزوں کی کلیئرٹی تو غور نہیں کیا چونکہ لفظوں پر، تو چیزیں آپس میں گڈ مڈ ہیں. آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیے جس کو کانفیڈنس کی کمی کا معاشرے نے الزام دے رکھا ہے، وہی تو کانفیڈنس کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے. پھر اس انسان کو ایک ایسے انسان کے ساتھ اگر یہ بندہ تعلق میں آ جائے، فرض کریں ایک بچہ ایسا ہے یا کوئی بڑا آدمی ایسا ہے، بڑے لوگوں میں بھی بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے کانفیڈنس کی کمی، کوئی ایسے انسان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ اگر بن جائے جو اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جو اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، جو اس کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے جو پورے انسان کو دینے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک پرابلم یہ کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چونکہ بچہ دیکھنے میں میرے آدھے سائز کا ہے نا، تو میں اسے پورے آدمی والی عزت نہیں دیتا، میں اسے آدھے انسان والی عزت دیتا ہوں کیونکہ میں اسے آدھا انسان سمجھتا ہوں. اپنے سے کمزور، اپنے سے چھوٹے کو عزت دینا یہی اصل میں کام ہے. اپنے سے بڑے اور طاقتور کو تو عزت آپ خود ہی دیتے ہیں، اس کو آپ مطلب ذرا اس کے ساتھ کریں وہ کام، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو تو آپ خود ہی صحیح چلتے ہیں اس کے ساتھ. تو بچے کے ساتھ بھی رسپیکٹ فل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسا بندہ جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کانفیڈنس کی کمی ہے، وہ انسان جو اس کو رسپیکٹ دے گا، وہ انسان جو اس کو ٹرسٹ کرے گا، تھوڑی دیر میں یہ اس انسان کے سامنے کانفیڈنٹلی بیہیو کرے گا. یہ اپنے کانفیڈنس کو گین کرنا، اس کا کانفیڈنس انشاءاللہ ریسٹور ہونا شروع ہوگا اس انسان کی پریزنس میں جو اس پر اعتماد کر رہا ہے, اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے, ایز اف کہ یہ پورا یعنی ایک بڑے آدمی کو جو رسپیکٹ دی جاتی ہے. ایک بات اور کرتا ہوں پھر میری بات ختم, اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ سوالات شروع. آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, کتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں سوچ لیں اپنے ذہن میں, کتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, کتنا بڑا آدمی, جتنا بڑا آدمی آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے آدمی کو دنیا جتنی رسپیکٹ دیتی ہے نا, آپ اپنے بچے کو اتنی رسپیکٹ ابھی سے دینا شروع کر دیجئے اور اس کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ اتنا بڑا آدمی بن کے دکھائے گا. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ اس کو مل رہا ہے سوسائٹی میں, اس طرح کا ٹریٹمنٹ کس طرح کے انسان کو ملتا ہے. خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں اس ڈائریکشن میں نہ نکل جائے. تو رسپیکٹ بہت ہی اہم تربیہ جو ہے, میں سم اپ کر دیتا ہوں, تربیہ کا نان نیگوشیبل نان کمپرومائزیبل پری ریکوزٹ ہے تعلق. اور تعلق پیدا ہوتا ہے جب میں سامنے والے کو رسپیکٹ دیتا ہوں, جب میں سامنے والے کو سمجھانے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, جب میں سامنے والے کو سننے میں دلچسپی لیتا ہوں. تو تعلق بنائیے اور انشاءاللہ تربیہ اس کے, اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اور اس سے تعلق بنائیے, اپنا تزکیہ کرتے رہیے, اس سے تعلق بناتے رہیے, اس کی تربیہ ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. تو آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے سوال, اب میں جاتا ہوں سوالات کے اوپر. اچھا ایک بات یہ ہے کہ اس میں ایک مشورہ آیا ہے کہ بھائی لوگوں کو کہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹائم لگانے کی بجائے بچوں کی چائلڈ سائیکالوجی, چائلڈ سائیکالوجی کا لٹریچر پڑھیں. اصل میں چائلڈ سائیکالوجی کا جو لٹریچر ویسٹ میں ہے وہ ہمارے ایمانی تناظر میں نہیں ہے. میں یہ بات اس بیسس پہ کر رہا ہوں کہ میں ویسٹ کے لٹریچر سے بھی واقف ہوں, اور بہرحال ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے کیا کریں. اس کے لیے جو سب سے زبردست چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو بچہ اللہ نے آپ کی زندگی میں اتارا ہے, آپ کی زندگی میں جو لوگ والدین ہیں نا ان کی زندگی میں اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں, ایک تو قرآن اتارا ہے ہر ایک کی زندگی میں, دوسرا بچوں کو اتارا ہے. اپنے بچوں کو آبزرو کریں, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں. وہ انسان جو اپنے بچے کو کہانی سناتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کا بچہ اس سے باتیں کرتا ہے, اس کو چائلڈ سائیکالوجی کی الحمدللہ ایک ریزنیبل ماسٹری ہے. وہ انسان جس کے پاس چائلڈ سائیکالوجی یا سائیکالوجی کی ڈگری ہے لیکن بچے اسے پسند نہیں کرتے, اس سے ڈگری واپس لے لینی چاہیے. اچھا اسی طرح کمبائن فیملی سسٹم میں بچوں کو کیسے گروم کریں؟ بھائی جیسے ویسے گروم کرتے ہیں, مطلب ویسے ہی کریں, صحیح رہیں, اس میں پریشان نہیں ہوں. کمبائن فیملی کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ چیلنجز بھی ہیں. اس میں کمبائن فیملی میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق ہو. بلکہ چاہے کمبائن فیملی ہو, چاہے نیوکلیئر فیملی ہو, چاہے جوائنٹ فیملی ہو, ایک بات ضرور رکھیے, جو شریک حیات ہے نا اس کو حیات میں شریک کیجیے, اس کے ساتھ گہرا تعلق بنائیے. اس وقت بہت سے لوگوں کا جو شریک حیات ہے وہ حیات میں شریک نہیں ہے, وہ شریک کمرہ ہے, شریک حیات نہیں ہے. روم میٹ اور لائف پارٹنر میں بہت فرق ہوتا ہے. لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جس سے لائف ڈسکس ہوتی ہے, لائف میں شیئرنگ ہوتی ہے, لائف کے پرسپیکٹیوز شیئر ہوتے ہیں, اس سے اس کو سنا جاتا ہے, اس کے ساتھ ٹائم لگایا جاتا ہے, اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, لائف میں اس کو انوالو کیا جاتا ہے. دو الگ زندگیاں نہیں گزرتی. تم چونکہ میری بیوی ہو لہذا تمہارا کام ہے کہ میرے یہ کام کر دیا کرو, صرف اس درجے پر بیوی کو نہیں رکھا جاتا بلکہ بیوی کو انوالو کیا جاتا ہے. بیوی بھی شوہر کے ساتھ بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کرتی ہے. تو یہ اسپاؤس ریلیشن شپ ہے وہ بہت اہم ہے. اسی طرح فیملی میں اور لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ بہت اہم ہے. چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہو, چاہے آپ نیوکلیئر فیملی ہو, آپ کو جو گرینڈ پیرنٹس ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں ان کی کوئی بات جتنی غلط لگے, ایک چیز سمجھ لیجیے, بچوں کے سامنے جب اپنے رشتہ داروں کی غیبت ہوتی ہے تو بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. تو لوگوں کو ڈسکس نہیں کریں, بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی غیبت نہ کرنا, ٹیچر کی غیبت نہ کرنا, شوہر کی غیبت نہ کرنا, بیوی کی غیبت نہ کرنا, اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہ کرنا, یہ ہمارے معاشرے میں سب سے مشکل کام ہے.
What is the difference about Islamic school system or other commercial school system like falan falan falan? Okay. Bhai, ab main kya bataun?
School school hota hai. Uske andar kuch cheezein aap deen sikhane ke liye paida karte hain, lekin school ka jo bunyadi masla hai, wo masla apni jagah khada hai. Aur wo masla ye hai ki bachchon par aitmad nahi kiya jata. Bachchon ko exam ki daud mein lagaya jata hai. तो हम इस्लामिक स्कूल की अच्छी बात यह है कि वहाँ बच्चों को बुरे माहौल से बचाने की फिक्र की जाती है. दैट्स वंडरफुल. लेकिन जो मसला है वो ये है कि अगर आपके स्कूल में बच्चे की इज्जत नंबर लाने की वजह से होती है और अनकंडीशनल प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट इंश्योर्ड, तो ये माहौल अच्छा नहीं है. इस माहौल को ठीक होने की जरूरत है. यानी हर बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट की जाएगी. किसी बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल इस इदारे में डैमेज नहीं होगा. किसी बच्चे के कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं किया जाएगा किसी भी सिचुएशन में. यह है अच्छा स्कूल. और उसको आलूदगियों से, बुराइयों से वो भी बचाया जाएगा. यह बहुत अच्छी बात है. इस वक्त की जो सिचुएशन है, बहुत माजरत के साथ, हो सकता है बहुत से दोस्त इस पर नाराज हो जो मैंने इतनी सख्त स्टेटमेंट दी, लेकिन बात यह है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त, यानी अगर मैं तारीफ करूँ तो होगा यह कि फिर चीज़ें इस्लाह नहीं हो पाएगी. यानी मुझे चूँकि आखरत का खौफ लाहक है, इसलिए मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ. यानी बात यह है कि हमारे स्कूल्स चाहे इस्लामिक हों, चाहे वो इस्लाम का नाम ले रहे हों या ना ले रहे हों, अभी बहुत मामला ठीक होने की ज़रूरत है. अल्लाह करे कि हम हर बच्चे की जो नेचर है उस पर ट्रस्ट कर सकें. उस पर लाड प्यार और इज्जत में क्या फ़र्क है? लाड इज़ पैम्परिंग, प्यार और इज्जत बिल्कुल जायज़ चीज़ है. लाड नहीं करें. अपने बच्चे को अपने खौफ और अपने लाड से बचाने की जिम्मेदारी कबूल कीजिए. आपसे डरे भी नहीं और आप पैम्परिंग भी नहीं करें. पैम्परिंग का मतलब यह है कि आप बच्चे की हर ख्वाहिश मान रहे हैं, हर ख्वाहिश पूरी करना, हर बात मानना, ये ज़रूरी नहीं है. ये गलत कर रहे हैं आप. आप उस पर इतने खर्चे कर रहे हैं, आप उसको जो है वो इतनी उसको चीज़ें दिला रहे हैं और उसको जो मोहब्बत और रिस्पेक्ट देनी है वो नहीं कर रहे. इस वक्त बच्चों पे स्पेंड करना आसान हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो रहा है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप स्पेंड नहीं करें. आप उसको कोई ऐश नहीं कराएं. आप एक आसान सादा ज़िंदगी रखिए. एयर कंडीशन में रातें नहीं गुजरें. आम जिंदगी, जिंदगी के अंदर एक सादगी होनी चाहिए. लेकिन अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करें, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर शक नहीं करें. अगर आपका बच्चा ये कह रहा है मैंने नमाज़ पढ़ ली, तो उसकी बहन को बुला के नहीं पूछें बताओ इसने पढ़ी है. ये हम करते हैं कि नहीं करते? सच सच बताओ कहाँ से आ रहे हो. ये जुमला क्या बता रहा है? कि वैसे तो ये है झूठा. आपने चूंकि कहा है कि सच सच बताओ, इसलिए मजबूरन सच बोलेगा. ऐसा नहीं करें. एतमाद करें, अपने बच्चे पर यकीन करें. ये बात वाजे हो रही है? तो क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बातें करनी चाहिए बच्चे से, उसके सवालात को अप्रिशिएट करना चाहिए. वो बच्चा जो सवाल करता है और सवालात करने का शौक़ रखता है, वो क्रिटिकल थिंकर होता है. जिस बच्चे को हम सवाल करने की इजाज़त नहीं देते, वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग पे ताला डालते हैं. रब्बे करीम हमें हमारे वालदैन और असातिज़ा के लिए सदका जारिया बनाए. रब्बे करीम हमारे बच्चों और हमारे तलबा को हमारे लिए सदका जारिया बना दे.